एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व के श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो बाहर से तो शांत सी लगती है पर अंदर विचारों और भावनाओं का जैसे पूरा समंदर समेटे हुए है। वर्जीनिया वुल्फ का क्लासिक उपन्यास टू द लाइट हाउस।
हाँ, वर्जीनिया वुल्फ 20वीं सदी की मतलब वो लेखिका जिन्होंने उपन्यास लिखने का आप कह सकते हैं तरीका ही बदल दिया। वो ब्लूम्सबरी ग्रुप के एक बहुत अहम सदस्य थीं और उन्होंने न सिर्फ साहित्य पर बल्कि कला और उस दौर की सोच पर भी गहरी छाप छोड़ी।
और उनकी सबसे खास बात, वो कहानियों से ज्यादा किरदारों के मन के अंदर क्या चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देती थी। ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या चेतना प्रवाह वाली तकनीक है ना,
हाँ हाँ बिल्कुल,
उनके बहते चले जाते हैं, उसे वुल्फ ने मतलब कमाल की ऊंचाई दी। उनकी दूसरी किताबें भी हैं, मिसेस डेलोवे है, ऑलैंडो, वो भी इसी शैली के बेहतरीन नमूने हैं।
बिल्कुल। और ये भी कहते हैं कि उनके अपने जीवन के जो मानसिक संघर्ष थे उन्होंने उनके लेखन को एक खास मतलब एक मनोवैज्ञानिक गहराई दी, एक संवेदनशीलता। और टू द लाइट हाउस जो 1927 में आया, इसे तो कई लोग उनकी सबसे बेहतरीन रचना मानते हैं, है भी।
हाँ,
इसमें उनके बचपन की छुट्टियों की झलक है जो वो कॉर्नवॉल में बिताती थी। मिस्टर और मिसेज रैमसे के जो किरदार हैं वो तो काफी हद तक उनके अपने माता पिता पर ही आधारित लगते हैं, लेस्ली स्टीफन और जूलिया स्टीफन।
अच्छा, तो ये उपन्यास सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, मतलब बाहर क्या हुआ उसका नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ असल घटनाएं किरदारों के मन में घटती हैं, उनके विचार, उनकी यादें, उनके एहसास में जो पल पल बदलाव आते हैं वो सब। वुल्फ की दिलचस्पी इसमें ज्यादा है कि जिंदगी महसूस कैसी होती है, ना कि ये कि किरदारों के साथ असल में क्या होता है। कहानी की सतह देखें तो बहुत साधारण है, पर उसके नीचे भावनाओं और रिश्तों की बहुत जटिल परतें हैं।
तो चलिए इस साधारण सी दिखने वाली सतह को जरा कुरेदते हैं। उपन्यास की बनावट कैसी है और उसका केंद्र क्या है, मतलब क्या चीज है जो सबको बांधे रखती है?
ये उपन्यास देखिए यादों के इर्द गिर्द बुना गया है, हमारी धारणाएं और किसी की गैर मौजूदगी का जो एहसास होता है उसके चारों ओर। तीन अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है और सेटिंग है स्कॉटलैंड के आइल ऑफ स्काई पर, रैमजे परिवार का गर्मियों का घर। और वहां से खाड़ी के पार हमेशा एक दूर खड़ा लाइट हाउस दिखाई देता है।
ये लाइट हाउस, ये सिर्फ एक बिल्डिंग तो नहीं होगी यकीनन, इसका कोई गहरा मतलब होगा।
हाँ बिल्कुल, ये इस उपन्यास का जैसे दिल है, एक बहुत रहस्यमय प्रतीक। हाँ, एक मंजिल है जहाँ जाने की इच्छा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये एक विचार है, शायद सच्चाई का प्रतीक या स्पष्टता का, या वो बाहरी दुनिया जिसे हम कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते। हर किरदार इसे अपने नजरिए से देखता है और उसे पाना चाहता है। कहानी की शुरुआत तो बहुत छोटी सी बात से होती है, 6 साल का जेम्स रैमजे वो लाइट हाउस जाना चाहता है।
हाँ, और माँ यानी मिसेज रैमजे वो कहती हैं, हाँ बेटा अगर मौसम अच्छा रहा तो चलेंगे, लेकिन पिता मिस्टर रैमजे जो कि एक दार्शनिक हैं वो फौरन कहते हैं, नहीं मौसम खराब रहेगा, तुम नहीं जा पाओगे। बस इतनी सी बात,
बस इतनी सी ही बात, लेकिन ये छोटा सा घरेलू पल ये जैसे एक दरवाजा खोल देता है। यहीं से हम रैमजे परिवार के अंदर के तनाव, उनके उलझे हुए रिश्ते और उनके किरदारों के अकेलेपन और जुड़ाव की जो तलाश है उसे देखना शुरू करते हैं।
तो असल सवाल ये नहीं है कि वो लाइट हाउस पहुंचते हैं या नहीं, बल्कि कुछ और है।
बिल्कुल, असल सवाल ये नहीं, असल सवाल तो ये है कि हम इंसान, हम इस लगातार बहते समय चीजों के खो जाने की जो सच्चाई है और अपने अंदर का जो गहरा अकेलापन है उसके भी जीने का मतलब कैसे खोजते हैं, आपसी जुड़ाव कैसे बनाते हैं, कुछ स्थायी कुछ टिकाऊ कैसे ढूंढते हैं। इसीलिए इसमें कोई पारंपरिक कहानी या जिसे प्लॉट कहते हैं वो नहीं है। वुल्फ हमें सीधे किरदारों के मन की दुनिया में ले जाती हैं,
उनकी चेतना में।
हाँ, उनकी चेतना में हम उनकी आंखों से दुनिया देखते हैं, उनकी चिंताएं, उनका प्यार, उनकी नाराजगी और कभी कभी अचानक से कौन जाने वाली समझ के वो छोटे छोटे पल।
यानी अलग अलग किरदारों के नजरिए से जिंदगी की एक मिलीजुली तस्वीर दिखती है जिसमें खूबसूरती भी है और डर भी, गहरा लगाव भी है और एक अजीब सी नपाटी जा सकने वाली दूरी भी। तो फिर किरदारों पर बात करें, ऐसा लगता है ये सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने वाले मोहरे नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चेतना के वाहक ज्यादा हैं, कोई पारंपरिक हीरो या विलन नहीं। हर किरदार दुनिया को महसूस करने और उसे समझने का एक अलग चश्मा पहने हुए, एक अलग तरीका दिखाता है।
और इस दुनिया के केंद्र में है मिसेज रैमसे। कैसी हैं वो, उनके बारे में बताइए।
मिसेज रैमसे वो जैसे इस उपन्यास की आत्मा है। उनमें गजब की खूबसूरती है, दूसरों के लिए गहरी हमदर्दी और एक सहज समझ, इंट्यूशन जिसे कहते हैं। वो बिखरी हुई चीज़ों और लोगों को जोड़कर उनमें एक तालमेल, एक एकता का पल बना सकती हैं। खासकर वो डिनर पार्टी वाला सीन तो मतलब कमाल का है।
हाँ, वो बहुत यादगार है।
हाँ, वो उस जमाने की एक आदर्श पत्नी और माँ है। पति के अहम को सहलाना, 8 बच्चे हैं उनके, उनको संभालना, घर आए मेहमानों के रिश्ते जुड़वाने की कोशिश करना, ये सब करती हैं वो।
लेकिन क्या वो सिर्फ यही है, एक परफेक्ट आदर्श मूर्ति, या उनके अंदर भी कुछ और चलता है?
नहीं नहीं, सिर्फ वो नहीं है, उनके अंदर भी एक संघर्ष चलता रहता है। दूसरों की भावनाओं का बोझ वो उन्हें कहीं ना कहीं थका देता है, और वो जानती हैं कि ये जो खूबसूरती के पल वो रचती हैं, ये कितने नाजुक हैं, कितने पल भर के हैं। और फिर उपन्यास के बीच वाले हिस्से में, टाइम पासेस में, उनकी अचानक मौत हो जाती है।
हाँ, वो बहुत शॉकिंग है।
बहुत। लेकिन उनका न होना भी उनकी मौजूदगी से कम असरदार नहीं है। उनकी यादें, उनका प्रभाव वो उपन्यास के आखिरी हिस्से पर पूरी तरह छाया रहता है, तो उनकी कहानी उनके जीवन से भी आगे तक जाती है।
उन्हें अक्सर वो घर की देवी, एंजल इन द हाउस वाला लेबल दिया जाता है ना, जो चुपचाप सारा भावनात्मक बोझ उठाती है। लेकिन उनकी उस शांति के पीछे एक उदासी भी छिपी है। जैसे वो खुद एक जगह सोचती हैं, वी पेरिश्ड ईच अलोन, हम सब अकेले ही नष्ट हुए। ये बहुत मार्मिक है।
बिल्कुल।
फिर भी मामूली चीजों से जादू रचने की उनकी कला कमाल की है। लिली ब्रिस्को सोचती है ना उनके बारे में, शी वॉज द मेकर ऑफ ट्रायम्फ्स आउट ऑफ स्टफ दैट हैड नो पर्टिकुलर कैरेक्टर। मतलब वो ऐसी चीजों से जीत गढ़ लेती थी जिनमें कोई खास बात नहीं थी।
सही कहा। और उनके पति मिस्टर रैमसे, वो तो बिल्कुल अलग मिजाज के लगते हैं।
हाँ, मिस्टर रैमसे एक जाने माने मेटाफिजिकल दार्शनिक जो जिंदगी के बड़े बड़े सवालों से जूझते रहते हैं। वो तर्क और बुद्धि के प्रतीक हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी बौद्धिक उपलब्धियों को लेकर उतने ही असुरक्षित भी हैं। उन्हें लगातार दूसरों से, खासकर अपनी पत्नी से, तारीफ और सहानुभूति चाहिए होती है, लगभग बच्चों की तरह।
तो उनकी यात्रा कैसी है उपन्यास में? क्या वो बदलते हैं या वैसे ही रहते हैं?
नहीं, उनकी यात्रा दिलचस्प है। शुरू में वो एकदम कठोर यथार्थवादी लगते हैं, जो अपने बेटे की लाइट हाउस जाने की छोटी सी ख्वाहिश को भी कुचल देते हैं। लेकिन वक्त के साथ, खासकर मिसेज रैमसे की मौत के बाद, उनमें बदलाव आता है। वो अपनी बौद्धिक अकड़ और भावनात्मक दूरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और बिना कहे ही सही एक गहरे जुड़ाव तक पहुँचते हैं। जब वो आखिरकार अपने बच्चों के साथ लाइट हाउस की यात्रा करते हैं, तो एक पल ऐसा आता है जब वो अपने बेटे जेम्स की तारीफ करते हैं, और जेम्स का नजरिया भी उनके प्रति बदल जाता है। ये बहुत अहम पल है।
उनका वो विचार भी तो है उपन्यास में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, द ग्रेट रेवलेशन हैड नेवर कम, जीवन का अर्थ क्या है, वो महान रहस्य उद्घाटन कभी नहीं हुआ। ये शायद उनकी उस बौद्धिकता की सीमा को दिखाता है कि वो तर्क से दुनिया को समझना चाहते हैं, पर जीवन का असली मर्म शायद तर्क से परे हैं।
बिल्कुल। और इन दोनों के बीच, या शायद थोड़ी सी अलग खड़ी है, लिली ब्रिस्को, एक पेंटर। उसकी क्या भूमिका है कहानी में?
लिली ब्रिस्को बहुत बहुत अहम किरदार है। वो रैमसे परिवार की मेहमान है, अविवाहित हैं, और एक कलाकार बनने की कोशिश कर रही है। वो उस पारंपरिक पारिवारिक ढांचे से, जिसकी प्रतीक मिसेज रैमसे हैं, थोड़ी सी अलग है। वो जैसे हमारी आंखें हैं उपन्यास में, जो चीजों को एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देख रही है।
और उसकी पेंटिंग, वो तो काफी संघर्ष करती है उसे बनाने में, ना?
हाँ, उसका वो संघर्ष ही जैसे उपन्यास की कलात्मक रीढ़ है। पहले हिस्से में वो मिसेज रैमसे और जेम्स का पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करती है, पर कामयाब नहीं हो पाती। उसे समझ नहीं आता कि उनकी असलियत को और अपने विजन को कैनवस पर कैसे उतारे। फिर 10 साल बाद तीसरे हिस्से में वो फिर से उसी पेंटिंग को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन अब ये कोशिश सिर्फ पेंटिंग बनाना नहीं है,
बल्कि
अपनी यादों को समेटना, गुजरे वक्त को समझना, और मिसेज रैमसे की वो जो सहज एकता बनाने की शक्ति थी, और मिस्टर रैमसे का जो कठोर तर्क था, उन दोनों के बीच एक संतुलन खोजना बन जाता है। और जब वो आखिर में कैनवस पर एक लकीर खींचती है और कहती है, आई हैव हैड माई विजन, मुझे मेरी दृष्टि मिल गई है, तो वो जैसे उपन्यास का कलात्मक और भावनात्मक निचोड़ होता है।
तो लिली का संघर्ष कला के जरिए जीवन की उलझनों को सुलझाने और उसमें कोई अर्थ या व्यवस्था खोजने का प्रतीक है, एक कलाकार के तौर पर और एक महिला के तौर पर भी, जो शादी के पारंपरिक रास्ते से अलग अपनी पहचान बनाना चाहती है। उसका वो सोचना, सो दैट इज मैरिज, तो ये है शादी। जब वो रैम से दंपति को देखती है, काफी कुछ कहता है उस बारे में।
हाँ, बहुत कुछ। और फिर है नन्ना जेम्स राम से। उसकी कहानी तो पुन्यास को शुरू और खत्म करती है, फ्रेम करती है।
हाँ, जेम्स की यात्रा भी कमाल की है। शुरू में वो एक बच्चा है जिसे बस लाइट हाउस जाने की धुन सवार है, और अपने पिता से सख्त नफरत क्योंकि वो उसे रोकते हैं। 10 साल बाद वो एक चुप रहने वाला उदास सा किशोर है जिसे जबरदस्ती अपने पिता के साथ उसी लाइट हाउस की नाव यात्रा पर जाना पड़ता है।
और उस यात्रा में क्या होता है फिर पिता पुत्र के बीच?
उस यात्रा के दौरान उसका नजरिया धीरे धीरे बदलता है। पिता जो उसे पहले एक जालिम अत्याचारी लगते थे, अब उसे एक अकेले बूढ़ा मगर हिम्मती इंसान नजर आते हैं। और जब वो लाइट हाउस पहुंचते हैं तो जेम्स को लगता है कि कुछ सुलझ गया है, कुछ साफ हो गया है। जैसा वुल्फ लिखती हैं, ही हैड बिन टू द लाइट हाउस, ही हैड शेयर्ड विद हिज फादर सम सिंप्लीफिकेशन ऑफ हिज प्रॉब्लम। वो लाइट हाउस हो आया था, उसने अपने पिता के साथ अपनी समस्या का कुछ सरलीकरण साझा किया था। उसे एक तरह की स्पष्टता मिलती है।
और जेम्स की बहन कैम भी है, जो माँ और पिता के अलग अलग प्रभावों के बीच जैसे फंसी हुई महसूस करती है। और हाँ, लिली के जरिए हम मिस्टर और मिसेस रैमसे के रिश्ते की गहराई और उसके जो अनकहे पहलू हैं उनको भी महसूस करते हैं।
चलिए अब कहानी के भाव पर आते हैं। आपने शुरू में बताया था कि ये 3 हिस्सों में है। ये संरचना क्यों इतनी अहम है? इसका क्या मतलब है?
ये संरचना ही वुल्फ का समय और चेतना के साथ जो प्रयोग है उसको दिखाती है। पहला हिस्सा है द विंडो, खिड़की। ये सिर्फ एक ही दिन की कहानी है रैमसे परिवार के घर पर एक दोपहर और शाम। जेम्स की लाइट हाउस जाने की इच्छा, मिसेस रैमसे का दिलासा देना, मिस्टर रैमसे का इनकार करना, ये सब बाहरी घटनाएं हैं। पर असल कहानी किरदारों के मन के अंदर चल रही है। मिसेस रैमसे की चिंताएं, मिस्टर रैमसे की असुरक्षाएं, लिली का अपनी कला को लेकर संघर्ष, मेहमान पॉल रेले और मिंटा कायल के बीच पनपता रोमांस, ये सब।
और इस हिस्से का सबसे यादगार पल कौन सा है? क्लाइमैक्स क्या है?
वो डिनर पार्टी, जहां मिसेस रैमसे अपनी इच्छा शक्ति और हमदर्दी से मेज पर बैठे अलग थलग व्यक्तियों को एक सामंजस्यपूर्ण समूह में एकजुट करती हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया है और एक गहरा सच्चा जुड़ाव बन गया है, एक परफेक्ट क्षण। लेकिन यह हिस्सा खत्म होता है इस एहसास के साथ कि यह पल कितना नाजुक है, ये टिकने वाला नहीं है।
तो ये हिस्सा व्यक्तिपरक समय यानी हमारे महसूस किए गए समय, किरदारों के अंदरूनी जीवन और रिश्तों को जोड़ने की जो कोशिश है उस पर केंद्रित है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, टाइम पासेस। ये तो बहुत ही अलग है ना, एकदम हटके।
बहुत अलग और बहुत ही प्रयोगात्मक। ये सिर्फ कुछ पन्नों का हिस्सा है, लेकिन ये 10 साल के अंतराल को दिखाता है। और यहाँ फोकस किरदारों की चेतना से हटकर उस खाली धीरे धीरे टूटते हुए घर पर चला जाता है। समय अब किसी के महसूस करने की चीज नहीं रहता, बल्कि एक बेरहम, उदासीन, विनाशकारी ताकत के रूप में सामने आता है।
और इसमें जो बड़ी घटनाएं होती हैं, मौतें वगैरह, वो कैसे बताई जाती हैं?
बड़ी ही अजीब, ठंडे और अव्यक्तिक तरीके से, जैसे ब्रैकेट में लिखी कोई सूचना हो। हमें पता चलता है कि मिसेज रैमसे की अचानक मौत हो गई, बेटी प्रू बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, बेटा एंड्रयू पहले विश्व युद्ध में मारा गया। ये सब बिना किसी भावुकता के लगभग चलते चलते बता दिया जाता है, जो इसे और ज्यादा भयानक और मार्मिक बना देता है। प्रकृति, हवा, बारिश, जंगली घास, वो घर पर कब्जा कर लेती है, जैसे यादों को मिटा देना चाहती हो।
लेकिन अंत में घर को साफ किया जाता है, क्या उसमें कोई उम्मीद है?
हाँ, दो हाउसकीपर हैं, मिसेस मैकनैब और मिसेस बास्ट, वो घर को फिर से रहने लायक बनाती हैं। ये एक हल्की सी उम्मीद जगाता है कि शायद जिंदगी और यादें इस तबाही और अराजकता से उभर सकती हैं, उन्हें फिर से पाया जा सकता है। ये हिस्सा वस्तुनिष्ठ समय यानी घड़ी वाले समय की विनाश लीला और नुकसान की जो अव्यक्तिकता है उसे दिखाता है। ये पहले हिस्से के भावनात्मक व्यक्तिपरक समय से बिल्कुल उलट है। यहाँ तो घर खुद एक किरदार बन जाता है।
और फिर तीसरा हिस्सा, द लाइट हाउस। यहाँ कहानी कैसे आगे बढ़ती है, क्या होता है इस हिस्से में?
हम 10 साल बाद उसी घर में लौटते हैं। जो रैमसे परिवार के सदस्य बच गए हैं वो वापस आए हैं। घर बदल गया है, लोग बदल गए हैं। अब यहाँ दो कहानियां साथ साथ चलती हैं, एक तरफ मिस्टर रैमसे और उनके अब किशोर हो चुके बच्चे जेम्स और कैम, वो आखिरकार नाव में बैठकर लाइट हाउस की ओर जा रहे हैं।
वो यात्रा जो पहले नहीं हो पाई थी।
हाँ, वही सफर शुरू में तनाव भरा है, बच्चे पिता से नाराज हैं, चुप हैं, लेकिन धीरे धीरे, जैसा हमने जेम्स के बारे में बात की, उनकी धारणाएं बदलती हैं। पिता और बच्चों के बीच एक अनकहा मौन सुलह का पल आता है, لائٹ ہاؤس پہنچنا صرف ایک منزل پانا نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ اتیت سے اور ایک دوسرے سے جڑنے کا، صلح کرنے کا پرتیک بن جاتا ہے، ایک طرح کی بھاوناتمک تیرتھ یاترا۔
اور دوسری کہانی جو ساتھ چل رہی ہے،
دوسری کہانی لان پر کھڑی للی برسکو کی ہے۔ وہ اپنا ایزل لگا کر کھڑی ہے اور 10 سال پہلے شروع کی گئی اپنی پینٹنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ مسز ریمسی کی یادوں سے ابھیبھوت ہے، کھونے کے گہرے غم سے اور زندگی، کلا، مانویہ رشتوں سے جڑے سوالوں سے جوجھ رہی ہے۔ وہ دور جاتی ہوئی ناؤ کو دیکھتی ہے جس میں ریمسیز ہیں۔ اس کا پینٹنگ کے ساتھ سنگھرش اس کے اپنے اندرونی سنگھرش کا آئینہ ہے، اتیت کو سمجھنے کی کوشش ہے۔
اور کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں؟
ہاں، جیسے ہی ناؤ لائٹ ہاؤس پہنچتی ہے، ٹھیک اسی پل للی کو بھی اپنی درشٹی ملتی ہے۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ پینٹنگ میں سنتولن کیسے لانا ہے، رچنا کو کیسے پورا کرنا ہے، اور وہ کینوس پر بیچ میں ایک نرنائک لکیر کھینچتی ہے۔ یہ دونوں کہانیوں کا، باہری یاترا اور اندرونی یاترا کا، ایک ساتھ اپنے مقام پر پہنچنا ہے، ایک سنکلپ ہے۔
کمال ہے، یہ کتنا پرتیکاتمک ہے، یعنی ایک باہری یاترا لائٹ ہاؤس تک اور ایک اندرونی یاترا کلاتمک درشٹی تک ایک ہی پل میں پوری ہوتی ہیں۔ یہ صلح یادوں کی طاقت اور کلا کے ذریعے ارتھ کھوجنے کے وشیوں کو کتنی خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔
واہ، بالکل۔ تو اگر ہم مکھیہ وشیوں کو ایک بار پھر سے سمیٹیں، تو سب سے پہلے ہے سمے کا گزرنا اور یادوں کی طاقت۔ وولف دکھاتی ہیں کہ سمے کیسے ایک طرف چیزوں کو ختم کرتا ہے، نشٹ کرتا ہے، وہ وستونشٹ گھڑی والا سمے، لیکن دوسری طرف ہماری یادیں اور ہماری چیتنا اسی سمے کو اپنے طریقے سے محسوس کرتی ہیں اور سہیجتی ہیں۔ یہ ویکتی پرک سمے ہے۔ مسز ریم سے مرنے کے بعد بھی دوسروں کی یادوں کے ذریعے زندہ ہیں، ان کا پربھاؤ بنا رہتا ہے۔
اور دوسرا بڑا سوال، اصلیت کیا ہے، واستوکتا کی پرکرتی؟ کیا وہ مسٹر ریمسے کی ترک والی، تتھیوں والی دنیا ہے، یا مسز ریمسے کی بھاوناؤں، رشتوں اور انترگیان والی دنیا؟
وولف شاید یہ سجھاؤ دیتی ہیں کہ اصلیت ان دونوں کا، یا شاید اور بھی کئی درشٹیکوڑوں کا، ایک جٹل مشرن ہے، اور للی کی کلا اسی کوشش کا نام ہے، ان الگ الگ واستوکتاؤں کو ایک ساتھ پکڑنا، انہیں سنشلیشت کرنا۔
للی برسکو کا کردار، جو ایک اویوائت مہیلا کلاکار ہے، وہ ایک الگ راستہ دکھاتا ہے، ایک طرح سے کرانتیکاری وکلپ پرستت کرتا ہے۔ وہ اس سوال کو اٹھاتا ہے کہ کیا عورت کی سارتھکتا صرف شادی اور پریوار سے ہی ہے؟
ہاں، اور شاید سب سے اہم بات، کلا کی بھومکا۔ اس شن بھنگور دنیا میں جہاں سب کچھ بدل رہا ہے، نشٹ ہو رہا ہے، شاید صرف کلا ہی کچھ ایسا رچ سکتی ہے جو وقت کی مار جھیل جائے، جو ستھائی ہو۔ للی کا سنگھرش یہی دکھاتا ہے کہ کلا کیسے زندگی کی است ویستتا کو، اس کی اراجکتا کو سمیٹ کر اسے ایک شکل، ایک مطلب دے سکتی ہے۔ اس کی انتم درشٹی کلا کی اسی شکتی کی پشٹی ہے۔
لیکن ساتھ ہی یہ اپنیاس انسانی رشتوں کی مشکل کو بھی بہت ایمانداری سے دکھاتا ہے۔ کردار اکثر اپنے من کی دنیا میں بہت اکیلے ہوتے ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے اندر بند ہیں، جیسے لوگوں کے بیچ جو کہا نہیں جاتا، وہ انکہی باتیں، وہ دوریاں، وولف انہیں بڑی باریکی سے پکڑتی ہیں۔ سچا جڑاؤ، سچا کنیکشن کتنا مشکل اور کتنا قیمتی ہے، اور مسز ریمسے میں یہی خاصیت تھی کہ وہ ایسے پل رچ پاتی تھیں، وہ کنیکشن بنا پاتی تھیں، بھلے ہی وہ پل بھر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔
اور ان سب گہری جٹل باتوں کو کہنے کے لیے وولف کا جو طریقہ ہے، ان کی جو شیلی ہے، وہ بھی اپنے آپ میں انوکھی ہے۔ سٹریم آف کانشسنس کی بات ہم نے کی، مطلب سیدھے کرداروں کے من میں اتر جانا، ان کے وچاروں، یادوں، احساسوں کو ویسے ہی دکھانا جیسے وہ آتے جاتے ہیں، بنا کسی خاص ترتیب کے، الجھے ہوئے، جڑے ہوئے۔ یہ ہمیں کرداروں کے بہت بہت قریب لے جاتا ہے۔
اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ کہانی کبھی ایک کردار کے نظریے سے چلتی ہے، تو کبھی دوسرے کے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب سوئچ ہوا۔
ہاں، اسے تکنیکی بھاشا میں فری انڈائریکٹ ڈسکورس کہتے ہیں۔ آسان شبدوں میں سمجھیں تو وولف ہمیں بنا بتائے ایک کردار کے من سے دوسرے کے من میں لے جاتی ہیں۔ کبھی کبھی تو ایک ہی واقعے میں ایسا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم سیدھے ان کے وچاروں کو سن رہے ہوں، بنا کسی باہری کتھا واچک کے فلٹر کے۔ اس سے ہمیں ایک ہی گھٹنا یا استھتی کے کئی پہلو دکھتے ہیں، اور یہ احساس اور بھی گہرا ہوتا ہے کہ اصلیت ہر کسی کے لیے الگ الگ ہوتی ہے، سبجیکٹو ہوتی ہے۔
اور پرتیک، سمبلز تو بھرے پڑے اس اپنیاس میں۔ لائٹ ہاؤس تو ہے ہی وہ منزل، وہ سچائی، وہ استھرتا کا پرتیک، جو ہر کسی کے لیے کچھ الگ معنی رکھتا ہے۔ کبھی پتا جیسی کٹھورتا کا پرتیک لگتا ہے وہ اکیلا ٹاور، تو کبھی ماں جیسے سکون اور مارگ درشن کا वो स्थिर रोशनी।
हाँ, और समुद्र जो समय और जिंदगी के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है, कभी शांत कभी तूफानी, हमेशा बदलता हुआ, उसकी लहरों की जो लयबद्ध आवाज है वो जैसे किरदारों के मन के उतार चढ़ाव और वक्त के गुजरने की गूंज है। खिड़की जो अंदर की दुनिया, घर, मन और बाहर की दुनिया, असलियत के बीच का फ्रेम है। किरदार अक्सर खिड़की से बाहर देखते हुए सोचते हैं, मनन करते हैं। और हाँ, लिली की पेंटिंग जो कला के जरिए मतलब और व्यवस्था खोजने की कोशिश का सबसे बड़ा प्रतीक है।
वुल्फ की भाषा भी तो किसी कविता जैसी है ना। गद्य होते हुए भी उसमें एक लय है, इमेजरी बहुत सशक्त है। ऐसा लगता है जैसे वाक्य भी किरदारों की सोच की लहरों की तरह बह रहे हों, लंबे घुमावदार। इसे पढ़ना सिर्फ कहानी जानना नहीं है, बल्कि एक अनुभव से गुजरना है।
बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा और अक्सर दिल को छू लेने वाला अनुभव है। कहानी का जो भावनात्मक वजन है वो धीरे धीरे महसूस होता है, एकदम से नहीं। छोटी छोटी बातें जैसे मिसेज रैमजे का जेम्स को पढ़कर सुनाना या डिनर पार्टी में मोमबत्तियां जलाना, ये सब बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। मिसेज रैमजे की मौत का जो खालीपन और दुख है वो पाठक को जैसे घेर लेता है, और आखिरी हिस्से में उनकी गैर मौजूदगी बहुत शिद्दत से महसूस होती है। एक उदास सी खूबसूरती का एहसास होता है पूरे उपन्यास में, नुकसान को स्वीकार करने का, पर साथ ही यादों और कला की ताकत में एक उम्मीद का भी।
हाँ, ये किताब पढ़ने के बाद आप दुनिया को शायद थोड़ा अलग नजरिए से देखने लगते हैं, अपने अंदर चलने वाले विचारों पर, अपने रिश्तों की अनकही बातों पर, और उन छोटे छोटे क्षणभंगुर पलों पर ध्यान जाता है जो जिंदगी को असल में मायने देते हैं। ये बड़ी बड़ी कहानियों से हटकर एक पल, एक एहसास, एक धारणा के महत्व को दिखाती है। सही कहा आपने, वुल्फ ने उपन्यास लिखने के मायने ही बदल दिए। ये साबित किया कि कहानी का जादू सिर्फ घटनाओं में नहीं बल्कि उन्हें महसूस करने के तरीके में छिपा हो सकता है।
हाँ, और शायद ये उपन्यास हमें यही याद दिलाता है कि जिंदगी भले ही पल पल बदलती महसूस हो, हाथ से फिसलती लगे, लेकिन यादें, रिश्ते और कला, इनके जरिए हम उसमें गहरे अर्थ और एक तरह के ठहराव के लम्हे खोज सकते हैं।
शायद उन लम्हों को पकड़ना, उन्हें अपनी चेतना में सहेजना, उन्हें कला में ढालना, शायद यही वो सबसे स्थायी चीज है जो हम कर सकते हैं समय के इस निरंतर भाव के खिलाफ।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।